आप सुन रहे हैं हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव, एडिटर हेल्थ शॉर्ट्स हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह और आसान बना सकें। इसी वादे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं।
दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक उपचार पर। होम्योपैथी की शुरुआत हालांकि जर्मनी में 1700 ईस्वी में हुई, पर अब यह दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। भारत में भी होम्योपैथी उपचारों पर भरोसा करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। होम्योपैथी उपचार क्या है, कैसे किया जाता है और किन बीमारियों के लिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, आज के एपिसोड में हम इन सब पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर मुकेश बत्रा। डॉक्टर बत्रा, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में।
नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर बत्रा होम्योपैथी में जाना माना नाम है। इस क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर बत्रा, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि वास्तव में होम्योपैथी क्या है और ये कैसे काम करती है।
अगर हम होम्योपैथी जो शब्द है, अगर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक है होम्यो, दूसरे है पैथी, यानी कि इट्स अ स्टडी ऑफ सिमिलर्स। जैसे एलोपैथी जो है, जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है, उसमें जो है ऐसा माना जाता है कि इट ट्रीट्स अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट्स, यानी अगर आपको कब्ज है तो फिर आप जुलाब लेंगे, और होम्योपैथी जो है इट वर्क्स ऑन सिमिलर्स। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर आप प्याज काट रहे हैं तो आपकी आंखों में से पानी आएगा, नाक में से पानी आएगा, और सर्दी जैसे लक्षण होते हैं। इसी तरह से अगर आपको सर्दी है जिसमें आपके नाक में से पानी आ रहा है, आंख में से पानी आ रहा है, अगर आप अनियन से अगर आप दवाई बनाए छोटी मात्रा में, तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा, वो जो सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। तो ये एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूँ होम्योपैथी किस तरह से काम करती है। पर अगर हम आज के जमाने में जाएं तो इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू द वैक्सीन थेरेपी। जैसे वैक्सीन में क्या होता है, एक छोटी मात्रा में जो है वो जो वायरस है या बैक्टीरिया वो डाला जाता है अंदर, और बॉडी जो है उसके अगेंस्ट फिर रिएक्ट करती है और नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड करती है। तो इसी तरह से होम्योपैथी भी काम करती है। तो मैं ये कहूँगा कि उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ कि जिस तरह आजकल वैक्सीन थेरेपी काम करती है, उसी तरह होम्योपैथी काम करती है।
वेरी गुड। यानी कि जैसे सिम्टम्स किसी चीज से बॉडी रिएक्ट करके देती है, उसी को आप ट्रीटमेंट का आधार बनाते हैं, है ना, उसी पैटर्न पे ट्रीटमेंट करते हैं
जी।
तो सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिस पर हम एलोपैथी के बजाय होम्योपैथी पर भरोसा करें।
देखिये, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया भर में कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो कम्प्लीट है, जो सब चीजों के लिए ठीक होती है। अगर आप देख रहे हैं कि आजकल जो है नई बीमारियां आती रहती हैं, जैसे कि अभी कोविड आया, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो नई बीमारियां आती रहती हैं सामने, तो कोई भी चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है जो कंप्लीट है, और हर चिकित्सा पद्धति में कुछ ना कुछ लाभ होता है और उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कहता हूँ जोकिंगली कि वेदर इट इज एलोपैथी और होम्योपैथी और तिरुपैथी, जो काम करती है आपके लिए वो सही है। तो ये माना जाता है कि होम्योपैथी जो है वो NCDs में, यानी नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि जो एलोपैथी है उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर काफ़ी कंट्रोल लाए हैं और एंटीबायोटिक्स हैं, और उसकी वजह से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में आते हैं। पर वायरल इन्फेक्शन है और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिन्हें कहते हैं, उनमें जो है उनका लिमिटेड स्कोप होता है। और ऐसे बीमारियों में जो है होम्योपैथी जो है, जो माइंड और बॉडी है, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं और जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें होम्योपैथी जो है बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, अस्थमा दमा है, एलर्जीज हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बालों का झड़ना है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, सोराइसिस है, अर्टिकेरिया है, डर्मेटाइटिस है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथी जो है लाभदायक होती है। एंड इट्स एक्चुअली बेटर बिकॉज ये जो है जड़ से मिटाती है, इट गोज टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, और उसका जो है फिर परमानेंट इलाज होता है। तो जो क्रॉनिक बीमारी है उसमें जो है होम्योपैथी जो है काफी लाभदायक होती है।
लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जो भी आपके खराब लाइफस्टाइल के कारण आप जिन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं उसमें उसका इलाज होम्योपैथी से आप करवा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन समस्या है लाइफस्टाइल के कारण वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। क्या होम्योपैथी मोटापे का भी कोई उपचार बता सकती है?
जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही कठिन सवाल किया क्योंकि एक ऐसे छोटे से प्रोग्राम में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने कहा इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, तो जब तक लाइफस्टाइल बदली नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। मैं ऐसे दो चीज़ें जो है जोकिंगली कहता हूँ। सबसे पहले ये कहता हूँ कि द बेस्ट क्योर इज टू नॉड योर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। आप अपना सर हिलाइए, जब आपके सामने खाना आता है तो आप ना कहिए, यानी आप जो है ज़्यादा खाना ना खाइए। और दूसरी चीज़ होम्योपैथी के इलाज के बारे में मैं कहता हूँ कि जो होम्योपैथी की जो छोटी गोलियाँ हैं वो आप ज़मीन में बिखरा दीजिए और फिर उसको पिकअप करके वापस उसको छोटी छोटी बॉटल में डालिए, तो यानी कि आप एक्सरसाइज करिए। तो अगर आप खाने पे ध्यान दें और अगर आप एक्सरसाइज करें तो जितनी कैलोरीज आप अंदर ले रहे हैं उतनी कैलोरी से ज़्यादा बाहर एक्सपेंड करें तो आपको मोटापा नहीं होगा। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली नॉट अ मेडिकल इक्वेशन, इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खाते हैं और आप कितना उसको बाहर निकालते हैं। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। हैविंग सेड दैट, जी हाँ, होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। हमारे पास एक ऑनलाइन मेथड भी है जो हमने अभी हम कर रहे हैं फिलहाल में, जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि इसमें जो है दिमाग का भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेरी ऑफन इट्स ऑल्सो एन इमोशनल सब्स्टिट्यूट। जब हम खाते हैं तो हमें लगता है कि हम उदास हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, तो खाने से जो हमें खुशी मिलती है तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, फिर इस तरह से मोटापा हो जाता है। फिर अगर हम डिप्रेस होते हैं, अगर फिर हम चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, फिर अगेन हमारी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और उस तरह से भी मोटापा होता है। तो होम्योपैथी में जो है माइंड एंड बॉडी मेडिसिन है, तो उसका 100% टोटल इलाज होता है। तो क्योंकि ये होलिस्टिक इलाज होता है माइंड और बॉडी का, इसलिए इसमें जो है मोटापे में भी फायदा होता है। नंबर टू क्या होता है कि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिससे जो मेटाबॉलिक रेट है वो बैठे बैठे बढ़ जाता है। तो अगर आप बैठे बैठे ही आपकी जो सब पूरी बॉडी जो है फास्ट चलने लगे तो आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न हो जाएंगी। तो इस तरह से दो प्रकार से, एक तो मानसिक तनाव की वजह से उसको मिटाने की होम्योपैथिक दवाई जो है वो काम में आती है, और दूसरी जो है मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में होम्योपैथिक दवाई काम में आती है। तो अगर ये दो दवाइयों का जो अगर इस्तेमाल किया जाए तो अवश्य जो है मोटापे की बीमारी जो है वो कंट्रोल में आ सकती है।
सर जवाब आपका अच्छा तो था, मजेदार बहुत था, और वो क्यूट सी गोलियां मुझे याद आ गई, छोटी छोटी बहुत ही प्यारी लगती हैं वो गोलियां। लेकिन सर इसके साथ एक बात और कही जाती है कि होम्योपैथी में दवाएं बड़ी लिमिटेड हैं और अदल बदल कर ज्यादातर बीमारियों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है कि ज्यादा दवाइयां हम बना नहीं पा रहे हैं या बनाना नहीं चाहते हैं, बेसिक्स के विरुद्ध है ये?
नहीं देखिए, ये तो एक गलतफहमी है, सही नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर हैनेमन जैसे आपने कहा जो जर्मन डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथी की स्थापना करी, उस टाइम जो है सिर्फ 200 बेसिक दवाएं होती थी, अभी जो है 2000 से ज्यादा हैं। तो इतने सालों में ऑलमोस्ट 225 सालों से ऊपर अभी हो गए हैं, तो इतने सालों में जो है 2000 दवाइयां जो है ऐड हो गई हैं, और ये दवाइयां जो है इनको जो है एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया होता है, यानी किस तरह से दवाइयां बनाई जाती हैं उसको ले आउट किया जाता है, जैसे कि किस मात्रा में उसको बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है। और इस तरह से जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया है और यूरोपियन फार्माकोपिया है, अमेरिकन फार्माकोपिया है और इंडियन फार्माकोपिया है। तो फार्माकोपिया के हिसाब से जो है दवाई जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो जो भी दवाई बनाई जाती है उसमें पूरा रिसर्च करके उसको स्टैंडर्डाइज करके उसको फिर सामने लाया जाता है। तो 2000 तो जो है बेसिक दवाइयाँ हैं, पर अनगिनत दवाइयाँ हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं। अभी ऐसा माना जाता है कि जैसे विदेश में है ज़्यादा होम्योपैथी जो है वो फैल गई है, क्योंकि अभी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में माना ने कहा है कि होम्योपैथी जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड है, और वो जो है 25% बढ़ रही है साल एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 5 years। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर तो कम थी हैं विदेश में, पर होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है OTC बहुत ज़्यादा है, यानी ऑफ द काउंटर, यानी कि अगर आपको सर का दर्द है तो आप किसी फार्मेसी में जाकर होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं। अब ये दवाई जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ये मिक्सचर्स हैं, इसमें 4-5 दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, तो ये जो है बेसिक होम्योपैथी जो क्लासिकल आधार है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पर ये होम्योपैथी को पॉपुलराइज करता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है वो फार्मेसी में जाते हैं और ऐसी दवाइयां लेते हैं, जैसे अगर किसी को सर में दर्द हो तो वो एनल जैसे कि पेन किलर नहीं लेंगे पर होम्योपैथिक दवाई लेंगे, किसी को कमर में दर्द हो तो वो भी जाके फार्मेसी में जाके एलोपैथिक फार्मेसी में जाके, जैसे बूट्स है यूके में, या अगर हम देखेंगे तो फ्रांस में जो है ऑलमोस्ट एवरी फार्मेसी में होम्योपैथिक डिवीजन है जहाँ पे दवाइयां मिलती हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी दवाई है, मैं तो ये मानूंगा कि ऐसे तो लाखों दवाइयां हैं होम्योपैथी में। तो ये गलत फहमी है कि होम्योपैथी में जो है बहुत कमती दवाइयां हैं और नई दवाइयां जो है वो नहीं निकली है।
सर आपने बहुत जरूरी जानकारी दी, और वास्तव में ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग ये मानने लगे हैं कि 5-10 दवाइयां होती है, बट आपने कहा कि बेसिक ही 200 थी और अब 2000 से ज्यादा है। सर होम्योपैथी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या है, क्या इसमें बहुत सारे परहेज की जरूरत पड़ती है?
ये भी एक गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी में परहेज हो, पर एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि होम्योपैथी में जो है बिल्कुल परहेज नहीं है। सबसे पहले हैनेमन जिन्होंने होम्योपैथी की फाउंडेशन करी थी, उन्होंने अपनी किताब में एक चीज लिखी है, उन्होंने कहा कि एवरी मैन स्टमक इज लाइक हिज फुट, एवरी मैन स्टमक इज लाइक हिज फुट, जैसे एक जूता जो है वो सर साइज के पाँव में नहीं फिट होता, उसी तरह से एक यूनिवर्सल डाइट के वो अगेंस्ट थे। वो मानते थे कि डाइट जो है वो पर्सनल है, इंडिविजुअल है, मुझे करेला बहुत पसंद हो सकता है पर आपको करेला पसंद ही नहीं हो सकता, हो सकता है उससे आपको एलर्जी हो। तो हर आदमी औरत के ऊपर जो है एक अलग सा एक व्यवहार होता है, और जो आहार जो वो लेती है उसका जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। तो यूनिवर्सल डाइट होम्योपैथी में नहीं माना जाता है, पर इंडिविजुअल पर्सनलाइज डाइट माना जाता है कि वो काम करती है। इसी तरह से जो है कि कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है होम्योपैथी में, पर अगर कोई बीमारी के हिसाब से है तो फिर हम डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप ये चीज जो है उसको कमती करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शक्कर की बीमारी है तो कह सकते हैं आपको कि आप शक्कर कमती करिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो कहेंगे कि आप नमक कमती खाइए क्योंकि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर आप होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से कोई परहेज, ये तो बहुत ही आसान है। यानी जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी गोलियां होती हैं, मुझे याद है कि प्रैक्टिस में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको कैंडी डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि वो जो गोलियां इतनी मीठी होती हैं, उनको कोई इंजेक्शन नहीं होता और आराम से वो ठीक हो जाते हैं, तो दे एक्चुअली लव इट। सो इट्स एक्चुअली उसमें कोई परहेज नहीं है, बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। सिर्फ यह है कि दवाई खाने के आधे घंटे पहले और बाद में कुछ खाना है पीना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो नर्व एंडिंग से जाती हैं, और इसलिए आपके मुंह में अगर कोई फ्लेवर हो या कोई स्ट्रांग स्मेल हो तो फिर दवाई के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप कूला करें और दवाई के आधे घंटे पहले और बाद में कुछ खाए पिए नहीं, इसके अलावा और कोई परहेज बिल्कुल नहीं है होम्योपैथी में।
तो सर ये जो कैंडी डॉक्टर मीठी मीठी दवाइयां देते हैं, क्या डायबिटिक पेशेंट इन दवाइयों को ले सकते हैं?
जी हाँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक तो है कि हम बहुत कमती मात्रा में देते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत कमती मात्रा में देते हैं तो शुगर का उसमें कुछ असर नहीं पड़ता। नंबर टू है, दूसरी बात यह है कि होम्योपैथी दवाइयाँ जो है अलग अलग मात्रा में दी जाती हैं, ऐसी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्वीट पिल्स में दें, उनको जो है पानी में भी दिया जा सकता है। तो डिस्टिल वाटर में भी दवाइयाँ बनती हैं, अल्कोहल में भी बनती हैं और डिस्टिल वाटर में बनती हैं। तो खास करके विदेश में जो है डायबिटिक लोग जो होते हैं उनके लिए खास दवाइयाँ जो है वो डिस्टिल वाटर में बनती हैं, तो ना उसमें शक्कर होता है ना उसमें अल्कोहल होता है, तो किसी भी तरह से इतनी सी मात्रा का भी कुछ असर नहीं पड़ता उसमें, शुगर बढ़ता नहीं है बल्कि शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है।
सर भारत में आयुर्वेदा को लेकर बहुत तेजी से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, एलोपैथी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बड़ा ट्रस्ट है उस पर, तो कोई भी व्यक्ति होगा वो इन दोनों ट्रीटमेंट्स पर भारत में जरूर भरोसा करता होगा। ऐसे में क्या इन दोनों की दवाइयां लेते हुए भी आप होम्योपैथी का उपचार ले सकते हैं?
जी हाँ, ले सकते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक गलत फहमी है, आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ कि कई सालों पहले जो है डायबिटीज का एक रिसर्च हुआ था एथेंस में, ग्रीस में, वहाँ पे जो लोग जो है ओरल एंटी डायबिटिक दवाई ले रहे थे तो उसमें 45% कंट्रोल था, जब उसमें होम्योपैथी ऐड की गई उन्हीं पेशेंट्स में तो 95% कंट्रोल आया, यानी कि 50% ज्यादा रिजल्ट आया होम्योपैथी और एलोपैथी साथ में लेने के। तो कई ऐसी दवाइयां हैं जो आप उनको आप दवाइयाँ रेगुलरली ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आप उनको सडनली स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप करेंगे तो आपका शुगर जो है बढ़ जाएगा और आपको जो है किडनी में डैमेज हो सकता है, तो इसलिए उसको ग्रेजुअली विद्रॉ करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में आप एलोपैथी होम्योपैथी दोनों साथ में ले सकते हैं। इसी तरह से आप वैसे भी जो है ऐसा भी पाया गया है कि कई बीमारियों में जो है अगर आप दोनों दवाइयां साथ में लें तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आपको एक दवाई लेनी है तो एक चिकित्सा पद्धति में जाना है तो आपको ग्रेजुअली जो है जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है उसको ग्रेजुअली विद्रॉ करना पड़ेगा, सडनली आप विद्रॉ नहीं कर सकते, खास करके क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में।
दैट्स ग्रेट। और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि वो इस पर जाएं या नहीं जाएं और कैसे जाएं। सर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो बहुत तेजी से दुनिया भर में बढ़ रही है, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इनका होम्योपैथी में उपचार संभव है या नहीं?
मैं ऑनेस्टली कहूंगा हाँ और ना दोनों। हाँ इसलिए कहूंगा क्योंकि काफी ऐसी किडनी की बीमारियां हैं जहाँ पे खास करके जिसको क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स कहते हैं CKD, उसमें होम्योपैथी का उपचार जो है लाभदायक होता है और उसमें काफी मदद मिलती है। हैविंग सेड दैट, आजकल के जमाने में जो है क्योंकि जिस तरह से हम पेन किलर्स ले रहे हैं, सेल्फ ट्रीट कर रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रहा है तो किडनी प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है और इसीलिए जो है हमें डायलिसिस और कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। पर अगर इसे जल्दी मात्रा में इसका इलाज किया जाए होम्योपैथी के साथ तो हो सकता है कि वो उस हद तक ना पहुंचे वो बीमारी, तो अर्ली स्टेज में उसका 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 उपयोग हो सकता है होम्योपैथी में। और मैं चाहता हूं कि बहुत लोग जो है ऐसा करें क्योंकि फिर आगे जाके उनको फिर किडनी ट्रांसप्लांट लेने की जरूरत ना पड़े। हार्ट डिजीज के बारे में आपने कहा और कैंसर के बारे में कहा, तो हार्ट डिजीज में तो जो भी रिसर्च हुआ है वो ज्यादा एलोपैथी में है, तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को ज्यादा हार्ट डिजीज में होम्योपैथी दवाई लेने की रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाउएवर जैसे कि समझो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो जो है होम्योपैथी दवाई से कमती हो सकता है, पर किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ, हार्ट में ब्लॉकेज हुआ तो वो जो है उसको सर्जरी करनी चाहिए या उसको एलोपैथी दवाई लेनी चाहिए, तो इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं है। आपने कैंसर के बारे में कहा, कैंसर में भी जो है कई टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जिसमें अभी सर्जरी में और एलोपैथी इलाज में बहुत फायदा होता है और जहाँ पे भी जो प्रूवन है वो आपको वो लेना चाहिए। और अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर में कई सम लिमिटेड कैंसर्स में और खास करके पैलिएटिव केसेस में, जैसे कि जहाँ पे जो है पेशेंट जो है क्योर नहीं हो रहा पर फिर भी उसको उसको कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, उसको दवाई लेनी पड़ती है उसको सिर्फ दबाने के लिए, ऐसी स्थिति में जो है होम्योपैथी दवाई जो है लाभदायक होती है। तो पैलिएटिव स्टेज में और अगर किसी भी साइड इफेक्ट्स जो एलोपैथी के आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में उसके लिए भी होम्योपैथी जो है बहुत लाभदायक होती है। तो ऐसी दो केसेस में तो मैं कहूंगा कि आप अवश्य होम्योपैथी लीजिए और जहां पे भी जो भी क्लिनिकल प्रूवन ट्रीटमेंट है वही लेना चाहिए।
वेरी ऑनेस्ट आंसर सर, आपने बहुत ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दिया। अब मैं थोड़ा सा अपने फीमेल लिसनर्स की तरफ आती हूँ कि महिलाओं को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आजकल बढ़ने लगी हैं वो है PCOS, PCOD, हैवी ब्लीडिंग ऑन पीरियड्स या फिर एंडोमेट्रियोसिस के प्रॉब्लम्स, क्या इनके लिए हम होम्योपैथी पर भरोसा कर सकते हैं?
अवश्य और करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि होम्योपैथी इज अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो जो है घरेणी है, अगर वो काम पे कर रही है, जो भी है काम पे जा रही है, शी इज अ एग्जीक्यूटिव, शी इज अ वर्किंग वुमन और शी इज अ हाउसवाइफ, तब भी जो है जो उसकी समस्या होती है क्योंकि उसको खुद की हेल्थ संभालनी पड़ती है पर उसको ऑल्सो अपने घर का घर की हेल्थ में ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज शी इज एक्चुअली द होम मेकर ऑल्सो, एंड इफ हर हेल्थ इज नॉट गुड देन द फैमिली हेल्थ सफर्स। तो होम्योपैथी खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा औरतों को लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि जो दो या तीन चीजें जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी औरतों की बीमारियों के लिए, द फर्स्ट वन जो है सबसे पहले जैसे आपने कहा वो है हार्मोनल जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो है एंड्रोमेट्रोसिस होता है, उसकी वजह से PCOD होता है, ये जो है बहुत कॉमन हो रहा है और इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि हम जो है जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो आप एनिमल को खा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप किलो के हिसाब से उसको बेचते हैं, उसमें हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो वो हार्मोन जो है आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं। इसी तरह से कई प्लांट्स में भी जो है वो यू नो केमिकल्स होते हैं, तो ज्यादातर केमिकल्स और हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करते करने से जो है और उनको खाने से जो है ये बीमारियां जो है बढ़ रही हैं आजकल। पहले इतना नहीं, हम नहीं सुनते थे, एक तो इतना डायग्नोसिस भी नहीं होता था, पर दूसरा ये बीमारियां भी इतनी नहीं होती थी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनल है, और हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही सही इलाज है, एकदम सेफ है, श्योर है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि अगर कुछ भी आपको दवाई लेनी है तो आप पहले हार्मोन नहीं लीजिए, पहला होम्योपैथी लीजिए, अगर वो काम नहीं कर रही है तो फिर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट पे जाइए। अक्सर क्या होता है, उल्टा होता है कि पहले आप हार्मोनल ट्राई करते हैं, फिर अगर वो चीज सही नहीं होता तो फिर आप होम्योपैथी की ओर या और किसी चिकित्सा पद्धति की ओर जाते हैं। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए अभी पीसीओडी हो, पीसीएस हो, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो, अभी हम देखते हैं जैसे हमारी क्लिनिक्स में जो है कम से कम 50,000 पेशेंट हर महीने आते हैं बाल हेयर लॉस, बालों की बीमारियों के लिए, उसमें से आधे फीमेल्स होती हैं, तो मानिए कि 25,000 औरतें आती हैं और उनके बाल झड़ रहे हैं, तो उनके जो कॉमनेस्ट रीजन होता है तीन, एक तो है थायराइड प्रॉब्लम और दूसरा है पीसीओडी। तो अगर हम देखते हैं कि उनके बाल यहाँ से झड़ रहे हैं या यहाँ पे थोड़ा सा चिन के ऊपर बाल है और थोड़े से एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है और पीरियड्स इरेग्युलर हैं, अगर हम सोनोग्राफी कराएंगे तो अक्सर ज्यादातर जो है उनकी ओवेरियन में सिस्ट निकलेंगे, यानी पीसीओडी उनको होगा। और फिर पीसीओडी को अगर हम ठीक करेंगे जड़ से होम्योपैथी के द्वारा, वो सिस्ट जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे और बाल भी वापस उगने लगेंगे, जो बाल झड़ गए थे वो वापस आ जाते हैं, जो पिंपल था वो चला जाता है, जो पिंपल्स फेस में होते हैं वो भी चले जाते हैं, और जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाते हैं, जो पहले पीरियड जहाँ पे इरेगुलर होते थे, ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, समय पे नहीं आते थे, वो भी एकदम रेगुलर हो जाते हैं। तो होम्योपैथी इलाज जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट औरतों में जो है बहुत ही अच्छा है, और मैं तो कहूंगा कि अवश्य जो है उस पर सबसे पहले फर्स्ट ट्राई उसी में करनी चाहिए। और जो दूसरी प्रॉब्लम है औरतों की, जैसे जो आपने कहा, तो दूसरी प्रॉब्लम जो औरतों की है वो मैंने ये देखा है कि दैट इज मेंटल स्ट्रेस। अभी आजकल के जमाने जो है, जो औरत है वो घर भी संभाल रही है और ऑफिस में भी जा रही है और बीच में ट्रैवल भी कर रही है, और ट्रैवल में भी स्ट्रेस आजकल होता है।
करेक्ट,
क्योंकि आप कहाँ पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, सैंडविच बन के या बुरी तरह से, एवरीवेयर देयर इज स्ट्रेस। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ज्यादा जो आजकल बढ़ रही है, दैट इज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। तो मैंने देखा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खास करके पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी डिलीवरी के बाद काफी औरतों को कई महीनों तक जो है डिप्रेशन होता है, तो ऐसी मानसिक बीमारियों में होम्योपैथी का इलाज जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो दिस इज व्हाई आई से दैट फॉर हार्मोन्स एंड फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ होम्योपैथी इज अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड।
सर, ये मेंटल, इमोशनल और हार्मोनल प्रॉब्लम्स का जो एक बंच है ना, वो मेनोपॉज में आकर भी हिट करता है, तो मेनोपॉज के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे आप उसको डील कर सकते हैं?
हम अवश्य डील कर सकते हैं, क्योंकि अगेन दैट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम, और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो खास करके मेनोपॉजल वुमेन के लिए हेल्प करती हैं, और इसमें जो है काफी क्लिनिकल रिसर्च भी किया गया है। तो आप देखेंगे कि उस प्रकार जो है, जो कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है हॉट फ्लशेस का, जैसे पसीना आता है, गर्मी होती है, कपड़े जो है ढीले ढीले पहनते हैं, टाइट कपड़े पसंद नहीं होते, उस समय अक्सर थोड़ी बहुत दिमाग में भी थोड़ी सी सस्पिशन आ जाती है, क्योंकि हमारा जो वो जो सेक्सुअल प्रोवस है वो कमती हो रहा है, हमारा हस्बैंड जो है हमें ध्यान से देख नहीं रहा क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है। तो ऐसे सब स्थितियों में भी जो है होम्योपैथी जो है होलिस्टिक ट्रीटमेंट करती है और बहुत लाभदायक होती है।
थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत यूजफुल, बहुत काम की बातें हमें बताई। आप हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी, थैंक यू सो मच।
ये था हमारा आज का एपिसोड, इसे प्रोड्यूस किया था श्रुति पाल ने और एडिट किया था संजू अब्राहम ने। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com पर। हेल्दी जिंदगी सीजन 2 पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, क्योंकि पहला धन निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HDSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए log on to www.hdsmartcast.com।